मोक्षमार्गस्यनेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र संवर निर्जराधिकार नवम अधिकार है, उसका सप्तम सूत्र अनुप्रेक्षा सूत्र है। अनित्याशरण संसार एकत्वान्यत्वाशुच्या सर्वसंवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मन प्रेक्षा अशरण अनुप्रेक्षा का विवरण यथा मृगशावस्यैकान्ते बलवता क्षुधितेनामिशैषिणा व्याघ्रेणाभिभूतस्य न किंचित् शरणमस्ति। जिस प्रकार हिरण के बच्चे के लिए एकांत में किसी बलवान भूखे मांसाहारी व्याघ्र द्वारा अभिभूत हो जाने पर अर्थात पकड़ में आ जाने पर न किंचित् शरणमस्ति, कोई रक्षक नहीं है। हिरण के बच्चे को अगर व्याघ्र पकड़ लेता है, भूखा व्याघ्र, तो उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तथा उसी प्रकार जन्म जरा मृत्यु व्याघ्र जन्म जरा मृत्यु व्याधि प्रभृति व्यसन मध्ये, उसी प्रकार जन्म जरा मरण व्याधि आदि संकटों के बीच परिभ्रमतो जंतो भटकने वाले जीव के लिए शरणम न विद्यते, कोई रक्षक नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। परिपुष्टमपि शरीरम, अच्छी तरह से पुष्ट किया गया शरीर भी भोजनम प्रति सहायी भवति, भोजन के लिए सहायक बन जाता है। न व्यसनोपनिपाते, संकट आने पर शरीर कोई सहायक नहीं बन पाता। यत्नेन संचिता अर्था अपि न भवांतरम अनुगच्छन्ति, बड़े प्रयत्न पूर्वक संचित किया हुआ जो धन है वह भी आगामी भव तक अपने पीछे नहीं आता। संविभक्त सुख दुखाः सुहृदोपि, जिन्होंने सुख दुख हिल मिलकर एक साथ बांटे हैं, ऐसे मित्रजन भी न मरण काले परित्रायन्ते, मरण के समय रक्षक नहीं बन पाते। बांधवाः समुदिताश्च रुजा परितं न परिपालयन्ति, सारे संबंधी जन बांधव जन इकट्ठे होकर के भी एकत्रित होकर भी रोग से घिरे हुए मरणासन्न मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। अस्ति चेत, अब अगर कोई शरण है तो सुचरितो धर्मो, भली भांति आचरण में लाया गया धर्म है, आचरण में लाया गया धर्म है। धर्म का अर्थ मालूम है ना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र, आचरित धर्म है। व्यसन महारणवे तारण उपायो भवति, भली भांति आचरित धर्म संकट के महासमुद्र में पार लगने का उपाय बन जाता है, संकटों से पार लगा देता है, संकटों के सागर से पार कर देता है धर्म। मृत्युना नियमानस्य सहस्र नयनादयोपि न शरणम्, मृत्यु द्वारा ले जाए जाने वाले जीव के लिए इंद्र आदि भी रक्षक नहीं बन सकते। तस्मात, इसलिए भव व्यसन संकटे भवों के संकट समूह में धर्म एव शरणम्, धर्म ही रक्षक है। सुहृदो प्यनपाई, वही सुहृद है, सच्चा मित्र है, धर्म ही सच्चा मित्र है। और अनपाई, साथ छोड़ने वाला नहीं है, धोखेबाज नहीं है, विश्वासघाती नहीं है। नान्यत किंचित शरणमिति भावना अशरणानुप्रेक्षा, और कोई भी रक्षक नहीं है इस तरह से भावित करने का नाम, यानी अपने अंदर ये बात स्थिर हो जाए ऐसी चेष्टा करने का नाम अशरणानुप्रेक्षा, अशरण अनुप्रेक्षा है। एवं यस्याद्यवस्यतो नित्यमशरणोऽस्मीति वृषमुद्विग्नस्य सांसारिकेषु भावेषु ममत्व विगमो भवति। इस तरह इन साधु के लिए जो अद्यवस्यतः नित्यम अशरणोऽस्मीति अद्यवस्यतः, बार बार ये जो निश्चित कर लेते हैं कि मरण काल में किसी का कोई रक्षक नहीं है, मेरा भी कोई रक्षक नहीं है, इस तरह बार बार जो दृढ़ कर लेते हैं अपने संकल्प को, अपने निर्णय को कि यही है संसार की स्थिति, वृषम उद्विग्नस्य अत्यधिक सांसारिक भावों के प्रति अत्यधिक वो उद्विग्न है, यानी वो तंग आ चुका है कषायों से, वो जानता है सम्यक दृष्टि जीव कषाय आती है, वो जानता है कि कषाय आ रही है, लेकिन वो मजबूरी है, सर्वघाती उदय में आती है तो फिर वार करके चली जाती है, तो अंदर ही अंदर आत्मनिंदा सहित है। ऐसा लिखा है कि वो अपनी निंदा करता है कि देखो यदि मैं उन मुनियों के समान, उन वृत्तियों के समान कषायों को जीत लेता तो आज मुझे कषायों की मार नहीं पड़ती, ये कषाय मुझे पटकते हैं विषयों में और मैं विषय सुखों का अनुभव करता हूं, कषायों के अधीन होकर मैं विषय सुखों का अनुभव करता हूं। जैसे उदाहरण दिया है कि तलवर गृहीत तस्करवत, जैसे कोई कोतवाल किसी तस्कर को पकड़ ले तो वो नहीं चाहता कि मैं पिटूं, लेकिन पिटाई पड़ती है, तो सम्यक दृष्टि जीव उस सर्वघाती कषाय द्वारा पकड़ में आकर विषयों से पिटता है, अंदर ही अंदर उसको आत्मनिंदा भी होती है कि हाँ कषाय करना मेरी ही भूल है, मेरी ही गलती है, जब मैं अपनी उपादान शक्ति को बढ़ाऊंगा और योग्य निमित्त का सानिध्य मुझे प्राप्त होगा अपने उस सातिशय पुण्य से, तब मुझे इससे ऊपर उठना है, ऊपर उठना है, ऊपर उठना है, बार बार ये विचार। 22 सागर तक 16वें स्वर्ग में सुकुमाल स्वामी ने यही भाव किया था कि कब मैं मनुष्य बनकर इन राग परिणामों को छोड़ूं, इन विषयों को छोड़कर निर्ग्रंथ तपस्वी हो जाऊं, यही भावना की थी। उस पूर्व भाव में तो मुझे आर्यिका की पर्याय मिली थी, मैंने तपस्या की थी, अंत में बड़ा संलेखना का भी क्रम मैंने संपन्न किया था, पर अब पुनर्जन्म होने पर मनुष्य बनकर मैं शीघ्रातिशीघ्र तपस्या में तत्पर होना चाहता हूं। ऐसे भाव ने 22 सागर तक किए, क्योंकि यहां 8 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी और आयु पूर्ण करने के बाद देवलोक को प्राप्त हुए थे, और पूरे समय उनने यही भावना की कि मुझे दीक्षा लेना है, दीक्षा लेना है, और यहां आकर के शरीर बदल गया, स्थान बदल गया, समय बदल गया, वातावरण बदल गया, तो फिर याद नहीं रहा कि मुझे दीक्षा लेना है, और फिर मां ने भी ऐसा प्रतिबंध लगा रखा कि कभी कोई ऐसी संगति ही ना मिले इनको कि दीक्षा ले ले, तो फिर बस संसार में फंस गए। लेकिन जब उनके जो मामाश्री थे उनको विचार आया कि जिसका जन्म होते ही हम लोगों ने दीक्षा ली थी, इसके पिता ने और मैंने, यानी मामा और पिता दोनों एक साथ दीक्षित हुए थे उनके जन्म के समय, वो अभी क्या कर रहे हैं। तो उनको रिद्धियां थी, तो उनने जैसे ही अपने ज्ञान से जाना तो वो विस्मित हुए कि अरे ये तो कुछ ही महीने बचे हैं इसकी आयु के। तो फिर वो वहां पहुंच गए और उन्होंने उन्हीं के बगीचे में चैत्यालय के अंदर चौमासा स्थापित कर लिया। माँ ने प्रार्थना की कि आप अन्यत्र चले जाइए, भाई तो थे, मैं आपका सारा प्रबंध कर दूंगी। तो बोले अब तो स्थापित कर दिया, मैं कहाँ जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं गए और सुकुमाल को वहां जाने से रोक दिया कि उस तरफ मत जाना, इस चौमासे में बरसात में उस दिशा में मत जाना, उस चैत्यालय में मत जाना। लेकिन जब चतुर्मास संपन्न हुआ तो अंतिम दिन उन मुनिराज ने फिर से देखा कि अब तो आयु बिल्कुल समाप्ति की ओर है। तो फिर उनने सुकुमाल को सचेत करने का पुरुषार्थ किया और उन्होंने प्रातःकाल वो पाठ प्रारंभ किया जिस पाठ में देवलोक के उस विमान का वर्णन था जहां से सुकुमाल आए थे। और सुकुमाल उस समय जागृत थे, उनके कानों तक वो आवाज आ रही थी, उसको सुनते ही साथ उनको जाति स्मरण हो जाता और वो विचार करते हैं कि मैंने उस जीवन में यही भावना की थी कि मनुष्य बनकर के तपस्या करना है, तपस्या करना है, और यहां आकर मैं क्या करने लग गया। ये एकदम उनको अंदर ही अंदर बड़ा अजीब सा लगता है और वो उन मुनिराज के पास जाकर दीक्षा लेते हैं। वो सब पूरी प्रक्रिया है, कथा में सब वर्णन है। और दीक्षा लेकर, दीक्षा से पूर्व वार्तालाप होता है और फिर दीक्षा लेकर वो वहाँ से निकल जाते हैं और वो साधु भी निकल जाते हैं। चौमासा समाप्त हो चुका था और अंत में फिर भयंकर उपसर्ग को जीत करके वो सर्वार्थ सिद्धि विमान में अहमिंद्र पद को प्राप्त होते हैं। उद्विग्न से भ्रषम उद्विग, अत्यंत परेशान रहते हैं वो सांसारिक भावों के प्रति। राग द्वेष होते जरूर हैं लेकिन राग द्वेष में राग किसी से हो रहा है, उनको राग से राग नहीं है, किसी वस्तु से राग हो रहा है। कर्म का उदय सर्वघाती कर्म है पर इष्ट बुद्धि नहीं है उनको उसके प्रति। अंदर से उनको लगता है पाप बीजे सुखे नास्ता, वो जानते हैं कि ये जो सुख है संसार का, इसमें केवल पाप बंद होता है। उसके प्रति सच्चे सुख की आस्था नहीं है उनको। तो कैसे उनका समय निकलता होगा सम्यक दृष्टि जीवों का, और विशेष रूप से उन सम्यक दृष्टियों का जो सत्संगति में रहते हैं लेकिन दीक्षा में असमर्थ है, देवगति में है, समोह शरण में आते जाते रहते हैं, उस भव में दीक्षा नहीं ले सकते। भक्ति करते हैं, धर्म श्रवण करते हैं और भी कई कुछ कार्य कर लेते हैं, धार्मिक कार्य, बस दीक्षा नहीं ले पाते। समय तो खैर निकल ही जाता है क्योंकि वहां पर संकट नहीं होते ना, तो जब संकट नहीं होता तो समय जल्दी निकलता है, संकट होता है तो कम समय भी ज्यादा देर से निकलता है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसे जीव को ममत्व परिणामों ममत्व विगमो भवति, ममत्व छूट जाता है इनका, सांसारिक पदार्थों के प्रति इनकी ममता टूट जाती है। भगवद अर्हत सर्वज्ञ प्रणीत एव मार्गे प्रयत्नो भवति, और भगवान अर्हत सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत मार्ग में ही पुरुषार्थ होता है उनका। अभी यहां तो चर्चा मुनिराजों की चल रही है क्योंकि 57 संवरों का वर्णन है। तो ऐसा बार बार चिंतन करने वाले, अनुप्रेक्षा करने वाले जो साधु हैं, उनकी धर्म में ही रुचि होती है और बाकी जो विकारी भाव हैं उनके प्रति उनकी ममता छूट जाती है। फिर संसार अनुप्रेक्षा की बात आती है। कर्म विपाक वशाद आत्मनो भवांतरावाप्ति ही संसार। कर्म के उदय के प्रभाव से एक आत्मा का दूसरे भव में जाना, दूसरे भव को प्राप्त करना, एक भव से दूसरे भव को प्राप्त करना संसार है। पहले क्या कहा था, संसारिणो मुक्ताश्च, वहां पर कहा था संसरणम संसार है, चतुर्गति परिभ्रमणम इत्यर्थ है, चार गतियों में भटकने का नाम संसार। यहां क्या कह रहे हैं कि कर्म के उदय वश आत्मा का अन्य भवों को प्राप्त करते रहना संसार है। एक ही बात है, सब पुरस्तात पंचविध परिवर्तन रूपेण व्याख्यात। पूर्व में वह संसार पांच प्रकार के परिवर्तन रूप से व्याख्या में आ चुका है, अर्थात इसकी व्याख्या की जा चुकी है संसार की। तस्मिन् नेक योनि कुल कोटि बहुशत सहस्र संकटे संसारे परिभ्रमण जीव। उस संसार में जहां पर ननेक योनि, अनेक योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, फिर अनेक कुल कोटियां हैं, 97.5 कुल कोटियां हैं, बहुशत सहस्र संकट, लाखों संकटों से भरा हुआ जो संसार है उसमें भटकने वाला जीव कर्म यंत्र प्रेरित, कर्म रूपी यंत्र से प्रेरित होता हुआ, पिता भूतवा भ्राता, कभी किसी का पिता बन जाता है, कभी उसी का भाई बन जाता है, और कभी पुत्र उसी का पुत्र बन जाता है जिसका पिता था अथवा जिसका भाई था। पौत्रश्च भवति, कभी उसी का पौत्र बन जाता है, पुत्र का पुत्र। माता भूत्वा भगिनी भार्या द्विता च भवति, माँ बनकर कभी बहन बन जाती है, कभी पत्नी बन जाती है। माँ एक जन्म में माँ है, किसी जन्म में बहन है, फिर वही बहन किसी जन्म में पत्नी बन गई और फिर किसी जन्म में अपनी बेटी बन जाती है। स्वामी भूत्वा दासो भवति, स्वामी बनकर दास बन जाता है। दासो भूत्वा स्वाम्यपि भवति, दास होकर कभी स्वामी भी बन जाता है। नट इव रंगे, जैसे कोई एक नट होता है, वो रंगमंच पर कलाकार, एक ही कलाकार है, वो कितने सारे रूप धारण करता है, कभी अंबेडकर बनता है, कभी कर्ण बनता है, कभी और कुछ बन जाता है, श्री कृष्ण बन जाता है, कभी राम बन जाता है, क्या क्या नहीं बनता। अथवा किम बहुना, फिर आचार्य बहुत चोट पहुंचाने वाली बात कह रहे हैं कि हम अधिक क्या कहें, स्वयं आत्मन पुत्र भवति, स्वयं अपना ही पुत्र बन जाता है। यानी अपनी पत्नी से समागम किया, मृत्यु हो गई और अपनी पत्नी के गर्भ में खुद चला गया और अपना ही पुत्र बन गया, खत्म हो गया। वो पिता तो खत्म हो गया लेकिन वो अपना ही पुत्र बन गया अपनी पत्नी के गर्भ में। इत्येवम आदि, इस प्रकार को आदि लेकर संसार स्वभाव चिंतनम, संसार अनुप्रेक्षा, संसार के स्वभाव का चिंतन करना संसार अनुप्रेक्षा है। एवं यस्य भावयत, इस प्रकार ऐसी भावना करने वाले के संसार दुख भयाद उद्विग्नस्य ततो निर्वेदो भवति। संसार के दुखों से, संसार संबंधी दुखों के भय से वो उद्विग्न हो जाता है। भयभीत हो जाता है और भयभीत होकर के उनको ततो निर्वेदो होती, उस संसार के प्रति अथवा संसार के दुखों के प्रति निर्वेद हो जाता है, वैराग्य हो जाता है। निर्वेद का अर्थ वैराग्य है। निर्विन्नश्च और निर्वेद को प्राप्त होकर के संसार प्रहाणाय प्रयतते, संसार की प्रहानि के लिए अर्थात प्रकृष्ट रूप से हानि हो जाए, माने मेरा संसार भ्रमण हानि को प्राप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ करता है, प्रयत्न करता है, इस तरह संसार अनुप्रेक्षा है। इसके बाद देखिए जन्म जरा मरणावृत्ति महादुखानुभवनम प्रति एक एवाहम न कश्चिन में स्वपरो वा विद्यते। जन्म जरा का अर्थ वृद्धावस्था है, मरण का अर्थ मृत्यु है, इसमें जो आवृत्ति चल रही है बार बार ऐसे मेरा भ्रमण हो रहा है, उसके महादुखों का जो मुझे अनुभव होता है, वो जो दुख मुझे भुगतने पड़ रहे हैं उसके प्रति, उन दुखों के प्रति एक एवाहम, मैं निपट अकेला हूं, मैं बिल्कुल अकेला हूं, इन दुखों को भोगने में मेरा कोई साथी नहीं है। न कश्चिन में स्व, मेरा कोई अपना नहीं है, परो वा, मेरा कोई पराया भी नहीं है। एक एव जाए हम, मैं अकेला ही तो जन्म ले रहा हूं। एक एव म्रिये, अकेला ही मैं मरता हूं। नामे कश्चित स्वजन परजनो वा, और मेरा कोई स्वजन परजन, व्याधि जन्म व्याधि जरा मरणादीनि दुखानि अपहरति, मेरी व्याधियों को, मेरे बुढ़ापे को, मेरी मृत्यु आदि को, जो मेरे लिए बहुत दुखदायी हैं, इन दुखों को कोई भी अपहृत नहीं कर सकता, यानी कोई अलग नहीं कर सकता, मेरे से छुड़ा नहीं सकता। बंधु मित्राणि श्मशानन नाति वर्तन्ते, और मेरे जो बंधुजन हैं, रिश्तेदार, और जो मेरे मित्रजन हैं, वो श्मशान के आगे नहीं जा सकते, बस श्मशान तक जाते हैं, और जो मेरा बचा हुआ शरीर है बस उसका वहां तक साथ दे पाते हैं, उसके आगे नहीं, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। धर्म एव मे सहाय सदा अनपायीति चिंतनमेकत्वानुप्रेक्षा, अकेला एक धर्म ही मेरा सहारा है, सहायक है, सदा अनपायीति, क्योंकि धर्म नष्ट नहीं होता, वो हमेशा साथ रहता है। इस तरह से चिंतन करना एकत्वानुप्रेक्षा है, इससे क्या लाभ होता है, इसका क्या परिणाम होता है? तो आचार्य कहते हैं एवं यस्य भावयत, इस प्रकार भावना करने वाले इस संवर इच्छुक साधु के स्वजनेषु प्रीत्यनुबंधो न भवति, अपने लोगों के प्रति प्रेम का जो अनुबंध होता है, संपर्क, वो नहीं होता। परजनेषु च द्वेषानुबंधो नोपजायते, और जो पराये लोग हैं, शत्रु वर्ग हैं, उनके प्रति भी द्वेष की गांठ नहीं बनती। जब ये पता चलता है कि भाई मैं अकेला ही हूं, मेरे कर्मों का फल मुझे ही मिलना है, तो फिर राग द्वेष शांत होते हैं। ततो निसंगदाम अभ्युपगतो मोक्षायैव घटते, अब फिर वो निष्परिग्रहत्व को प्राप्त होकर मोक्ष के लिए तत्पर हो जाते हैं। तदुपरांत आचार्य कहते हैं शरीराद अन्यत्व चिंतनम अन्यत्वानुप्रेक्षा, शरीर से जो भिन्नता है उसका चिंतन करना अन्यत्वानुप्रेक्षा है, शरीर से जो अपनी भिन्नता है उसका चिंतन करना। तद यथा, कैसे कैसे करना चिंतन, उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। बंधम प्रत्येकत्वे सत्यपि, बंध की अपेक्षा से देखो तो शरीर के जितने भी प्रदेश हैं वो आत्मा के सभी प्रदेशों पर हैं, तो एक मेक है बिल्कुल। पर ऐसा एकत्व होते हुए भी, ऐसा होने पर भी लक्षण भेदाद अन्योहम, लक्षण भिन्न होने के कारण मेरा लक्षण और पुद्गल का लक्षण दोनों के लक्षणों में भेद है, और उस भेद के कारण अन्योहम, मैं इससे अन्य हूं। पंडित जगनमोहन लाल जी कहते थे, एक चिंतन था उनका, कि अपन सामान्यतः जब अन्यत्व अनुप्रेक्षा करते हैं तो उसमें ऐसा चिंतन करते हैं कि ये सब पर है, ये सब पर है, ये सब पर है, ये मुझसे भिन्न है, कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा चिंतन करते हैं। न मेरा न तेरा चिड़िया रैन बसेरा, शाम को चिड़िया आकर पक्षी आकर पेड़ों पर बैठ जाते हैं, उड़ जाते हैं, फिर कितने समय का संयोग है वो, तो कुछ अपना नहीं है, ऐसा चिंतन करते हैं अपन अन्यत्व अनुप्रेक्षा में। लेकिन यहां आचार्य कह रहे हैं कि अहम अन्य, मैं इनसे अलग हूं। समझना दोनों में अंतर क्या है। पहले क्या था, ये अलग है, अब संलेखना के समय मैं इनसे अलग हूं, अथवा शुद्धोपयोग के पूर्व या ध्यान के समय मैं इनसे अलग हूं, बहुत अंतर है दोनों में। वो मुझसे अलग है, वो मुझसे अलग है, वो गिनते गिनते बहुत समय लग जाएगा, और यहां बस मैं इन सब से अलग हूं, खत्म खेल। ऐन्द्रियकम शरीरम, शरीर जो है वो इंद्रिय गम्य है, इंद्रियों का विषय है। अतीन्द्रियो हम, मैं अतीन्द्रिय हूं जीव। अज्ञम शरीरम, शरीर ज्ञान रहित है। ज्ञो हम, मैं ज्ञानवान हूं। अनित्यम शरीरम, नित्योहम, शरीर अनित्य है, आया था चला जाएगा। अहम नित्य, लेकिन मैं नित्य हूं, हमेशा रहने वाला हूं। आद्यंतवत शरीरम, प्रारंभ और अंत वाला ये शरीर है, कभी इसकी शुरुआत हुई थी, द्वि कोशिका से बनना प्रारंभ हुआ, एक कोशिका माँ की एक पिता की, और उनके मिलने से फिर उसके बाद जायगोट, ये सब पूरी एक प्रक्रिया होती है। एम्ब्रियोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट है पूरा, कि कैसे वो कोशिकाएं बढ़ती 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 फिर पूरा एक बालक तैयार हो जाता है, एक शरीर बन जाता है। तो वहां शुरुआत थी और श्मशान में इसका अंत भी है। तो आद्यंतवत शरीरम, आदि और अंत वाला ये शरीर है। अनाद्यनंतो हम, मैं अनादि अनंत हूं। बहूनि मे शरीर शत सहस्राणि अतीतानि संसारे परिभ्रमतः, संसार में परिभ्रमण करने वाले मैंने कई लाख शरीर धारण कर करके छोड़ दिए हैं, कई लाख शरीर। अभी समझाने के लिए कह रहे हैं आचार्य महाराज, नहीं तो फिर ज्यादा पढ़ा लिखा कोई हो तो बोलेगा कि अनंत शरीर धारण किया। अभी अनंत तुम्हारी अकल में नहीं आने वाला, शांत रहो, लाख सुनकर के विवेक को प्राप्त कर लो, अनंत अपने ज्ञान की सीमा में नहीं होता। तो आचार्य महाराज ये बता रहे हैं कि तुमने लाखों शरीर तुमने धारण करके छोड़े, और यहां तो स्वयं चिंतन कर रहे ना, मेरे लाखों शरीर संसार में भटकते भटकते छूट चुके हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि अपने किसी पिछले शरीर से बनी हुई कोई वस्तु अपने पास आ जाती है और अपन उसको चाहने लग जाते हैं, ये कितनी बढ़िया चीज़ है। फिर कोई अवधि ज्ञानी मुनि बताए कि बढ़िया चीज़ नहीं, तेरे ही शरीर है पुराना। वो वनस्पति संबंधी भी हो सकती है कोई वस्तु, कोई पृथ्वी कायिक संबंधी वस्तु, स्फटिक मणि है मान लो। हो सकता है जो स्फटिक आप अभी अंगूठी में पहन रहे हैं, उस स्फटिक में आपका जीव रह चुका हो भूतकाल में। पृथ्वी का एक जीव की पर्याय में आपका जीव हो सकता है उसमें कभी रहा हो। लाखों शरीर अपन ने धारण कर करके छोड़ दिए हैं। स एवाहम अन्यस्तेभ्यः, वही मैं उनसे अन्य हूं। इत्येवं शरीराद अन्यत्वम् शरीराद अप्यन्यत्वम्। इस तरह से जब शरीर से भी मैं भिन्न हूं तो मैं किमंग पुनर् बाह्येभ्य परिज्ञेभ्य। फिर हे मेरी आत्मन, तू ये बता कि जब इससे भी एक रूपता नहीं हो पाई, लाखों शरीर धारण कर करके छोड़े, लेकिन तो भी कभी जीव और शरीर हमेशा के लिए एक नहीं हुए, कुछ काल के लिए एक हो गए। जैसे गुलाब जामुन खाते समय गुलाब जामुन को मुंह में डालते हैं और एकदम, कुछ लोग तो आंख भी बंद कर लेते हैं, एक हो जाते हैं उसमें। क्या एक है? मुंह का बड़ा भारी जाल है। तो बोले कि हे जीव, जब इससे भी मैं अन्य हूं तो फिर इससे जो बाहर की अन्य परिग्रह भूत वस्तुएं हैं उनके बारे में क्या सोचना? जब यही अपना नहीं हुआ तो वो अपना कैसे हो जाएगा? इत्येवम् यस्य मनः समादधानस्य, इस प्रकार से अपने मन को समाधान देने वाले जो साधु हैं अथवा जो भी अनुप्रेक्षा चिंतक हैं, उनके शरीर आदिशु स्पृहा नोत्पद्यते। शरीर आदि के प्रति स्पृहा उत्पन्न नहीं होती। देखो, धर्मशाला में रुकते हैं, शिखर जी जाते हैं, तो कभी कभी तो अपन ये भी भूल जाते हैं कि कौन सा कमरा था, याद नहीं रखते। और अपन अपने पिछले कमरे भी भूल चुके हैं, जो पूर्व शरीर अपन ने धारण किए और छोड़े थे वो भी याद नहीं है अपने को। और इस शरीर के बाद किसी अन्य शरीर में जाने पर ये शरीर याद रहेगा क्या, जिसके लिए जिंदगी भर पाप कमा रहे हैं? ये याद भी रहेगा क्या? उन पापों से जो ठोकरें लगेंगी वो याद रहेंगी, ये शरीर छूट जाएगा। ततस्तत्व ज्ञान भावना पूर्व के वैराग्य प्रकर्षे, तो उस अन्यत्वानुप्रेक्षा से तत्व ज्ञान की भावना पूर्वक वैराग्य की उत्कृष्टता होने पर सती। कितनी सुंदर बात लिखी है, मात्र वैराग्य की उत्कृष्टता नहीं कह रहे हैं, तत्व ज्ञान भावना पूर्वक ही वैराग्य प्रकर्ष है। तत्व ज्ञान की भावना उसका कारण है वैराग्य का, यानी यहां पर तात्विक वैराग्य की बात कर रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। ये भी अध्यात्म शिरोमणि आचार्य थे और बड़े सावधान आचार्य थे। इन्होंने जो भी कथन किया है वो इतनी सावधानी से किया है कि इनके कथन से कोई भटक नहीं सकता, कोई गलत रास्ता नहीं निकाल सकता। ऐसी भावना करने वाले जो भी हैं अनुप्रेक्षा चिंतक, तो वैराग्य की उत्कृष्टता होने पर आत्यंतिकस्य मोक्ष सुखस्यावाप्तिर्भवति, यानी जब एकदम अन्यत्व भावना, अन्यत्व अनुप्रेक्षा की उत्कृष्टता आ जाती है, वैराग्य चरम सीमा को प्राप्त होता है, तब आत्यंतिक यानी उसके बाद कुछ भी नहीं बचता, वो अंतिम सुख है, ऐसे मोक्ष सुख की अवाप्ति अर्थात प्राप्ति होती है। इस तरह आज अपन पांच अनुप्रेक्षाओं तक पहुंचे हैं, छठी अनुप्रेक्षा का आगामी सत्र में वर्णन होगा। जैनम जयतु शासनम।